कमरे में हल्की सी दवाइयों की गंध फैल गई थी। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की भीड़ का शोर धीरे धीरे गायब हो गया और अंदर बस तीन लोगों की सांसों की आवाज़ रह गई। सुधीर चारपाई के कोने पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार शामली पर टिकी हुई थीं, ऐसे जैसे उसने बाकी सबको देखना ही बंद कर दिया हो। शामली उसके सामने खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास और मन में सवालों का तूफान। तभी सुधीर अचानक मुस्कुराया, एक अजीब सी बेमेल मुस्कान। दोस्त, उसने धीरे से कहा। शामली चौंकी। जी, तुम बहुत खूबसूरत हो, सुधीर ने बिल्कुल मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, बस एक बच्चे जैसी सच्चाई। बाकी सब? उसने अचानक अपना चेहरा घुमाया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। गंदे हैं। मकान मालिक मनोज, जो दरवाजे के पास खड़ा था, एकदम सख्त हो गया। सुधीर, ये क्या बोल रहा है तू, उसने थोड़ा तेज स्वर में कहा। लेकिन सुधीर ने जैसे उसे सुना ही नहीं, उसने उंगली से मनोज की तरफ इशारा किया। ये भी गंदा है। मनोज के चेहरे पर चोट सी आई। और सुधीर ने अपना सिर पकड़ लिया। इसने मुझे गंदी दवाई दी, उसकी आवाज़ अचानक शिकायत भरी हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, वो लगभग रोने जैसा चेहरा बना बैठा था। कमरे में एक पल के लिए भारी खामोशी छा गई। शामली का दिल बाट सा गया। उसने धीरे से मनोज की तरफ देखा। मनोज जी, ये सब क्या है? उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। सुधीर जी, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मनोज ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर वो धीरे धीरे आगे आया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुछ सेकंड तक सुधीर को देखा, जो अब भी बच्चे की तरह इधर उधर देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया। आज सुबह, उसकी आवाज़ भारी थी, हम दोनों दुकान के लिए निकले थे। शामली ध्यान से सुनने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, हंसते बोलते जा रहे थे। उसने एक पल को आंखें बंद की, जैसे वो पल फिर से जी रहा हो। फिर अचानक उसने धीरे से कहा, एक ट्रक आया। उसकी उंगलियां कस गईं, सीधे हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। शामली के दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। क्या? हाँ, मनोज ने सिर हिलाया। इतनी जोर की टक्कर थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह दब गया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं तो किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन सुधीर, उसने सुधीर की तरफ देखा। वो कुछ देर तक बेहोश रहा। कमरे में फिर खामोशी। सुधीर अब भी कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे उसे इस सबसे कोई मतलब ही नहीं। हम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, मनोज ने आगे कहा। डॉक्टर ने कहा, जान को खतरा नहीं है। लेकिन उसने रुककर शामली की तरफ देखा। दिमाग पर गहरी चोट आई है। शामली की सांसें धीमी हो गईं। और जब वो होश में आया, मनोज की आवाज़ और धीमी हो गई, तो वो ऐसा हो चुका था। उसने हाथ से इशारा किया, बिल्कुल बच्चे जैसा, पहचान नहीं पा रहा। बातें उल्टी सी थी, डर, शक। उसकी आंखों में नमी आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि ये टेम्प्ररी भी हो सकता है, या पता नहीं, वो बात अधूरी छोड़ गया। शामली कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसका दिल भारी हो गया था। मुझे बहुत अफसोस है, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़र सुधीर पर गई, जो अब भी अपनी उंगलियों से खेल रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने अपना बैग उठाया। मैं चलती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसका मन पहले ही बहुत थक चुका था, और अब ये सब वो और नहीं संभाल पा रही थी। वो मुड़ी, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी अचानक उसके दुपट्टे पर हल्का सा खिंचाव हुआ। उसके कदम रुक गए, दिल एकदम से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सुधीर उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही डर। दोस्त, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। शामली की भौहें हल्की सी कुड़ गईं। जी, मुझे अपने साथ ले चलो, उसने सीधा कहा। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि एक पल को शामली का दिल पिघल गया। यहाँ सब गंदे हैं, उसने फिर कहा, मुझे डर लगता है। शामली कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की। सुधीर जी, उसने बहुत प्यार से कहा, आपको यहीं रहना होगा, आपके भाई है ना, वो आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन सुधीर ने सिर जोर से हिलाया। नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। ये मुझे फिर दवाई देगा, उसने मनोज की तरफ इशारा किया। गंदी दवाई? मनोज ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। नहीं दूंगा, उसने धीरे से कहा। तू जो कहेगा वही होगा। लेकिन सुधीर ने जैसे उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने दुपट्टा और कसकर पकड़ लिया। तुम ले चलो, उसने फिर कहा। प्लीज। अब कमरे में एक अजीब सी स्थिति बन गई थी। शामली बीच में खड़ी थी, एक तरफ एक टूटा हुआ इंसान, दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। देखिए, उसने फिर से नरमी से कहा, मैं अभी नहीं ले जा सकती आपको, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन सुधीर मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अब डर के साथ सिपदर आ गई थी। मैं यहीं नहीं रहूंगा,
उसने लगभग रोते हुए कहा। मनोज ने ये सब देखा और फिर वो धीरे धीरे श्यामली के पास आया। उसकी आंखों में थकान और एक अजीब सी बेबसी थी। श्यामली, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, प्लीज बेटा। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, इसे अपने साथ ले चलो। वो चौंक गई। क्या? मैं? मनोज ने गहरी सांस ली। मैं थोड़ी देर में आकर इसे ले जाऊंगा। उसने सुधीर की तरफ देखा। देखो, ये तुम पर भरोसा कर रहा है, उसकी आवाज भर्रा गई। हमको तो दुश्मन मान लिया है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। श्यामली एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके दिमाग में सब कुछ घूमने लगा, दिन भर की थकान, मंदिर, विश्वनाथ और अब ये। उसने धीरे से सुधीर की तरफ देखा, जो अब भी उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था, जैसे वो ही उसकी दुनिया हो। फिर उसने मनोज की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब सिर्फ एक उम्मीद थी। और उसी पल श्यामली के सामने एक और फैसला खड़ा था, एक ऐसा फैसला जो शायद उसके आगे के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता था। कमरा शांत था, लेकिन उस खामोशी के अंदर बहुत कुछ तय होने वाला था।